संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें अनित्य, असरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व भावना संबंधी चर्चा अपन ने अभी तक की। अब आज अशुचि भावना संबंधी चर्चा करनी है। यह तो पहले से ही बताया गया है कि स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश, गांव और शरीर, इन सब संयोगों के संदर्भ में यह विचार किया जा रहा है कि ये संयोग अनित्य हैं, असरण हैं, असार हैं और अपना भगवान आत्मा नित्य है, सरणभूत है और सारभूत है। इस आत्मा को इस संसार में जितने भी सुख दुख भोगने पड़ते हैं, वे स्वयं अकेले ही भोगने पड़ते हैं और भोगने पड़ेंगे और इन्हें मेट कर ये मोक्ष में जाएगा, तब भी ये अकेले ही जाएगा। वास्तव में इसका सगा साथी कोई नहीं है। इतना चिंतन इन 5 भावनाओं के माध्यम से अपन ने किया। ये शरीर आदि संयोगों में इतना चिंतन हो जाने के बाद भी इनमें से एकत्व और ममत्व पूरी तरह टूटता नहीं है, और एकत्व ममत्व कदाचित टूट भी जाए तो इनके में राग बना ही रहता है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों में भी शरीरादि, स्त्री पुत्रादि के प्रति रागादि देखे जाते हैं। इसलिए अशुचि भावना के माध्यम से अब ये बताते हैं कि जिन्हें तू अपना मान रहा है, अपना जान रहा है और जिससे तू इतना राग कर रहा है, उसको तू एक बार गंभीरता से विचार कर तो देख कि वो कैसा है। उसका स्वरूप तेरे ख्याल में आएगा तो हो सकता है तू उसे राग ना करे, उसे अपना न माने। इसलिए यद्यपि उन्होंने अशुचि भावना में देह की अशुचिता की बात की कि ये शरीर अपवित्र है, खून मांस हड्डी का बना हुआ है, मैला है, कुचैला है, तेरा भगवान आत्मा अत्यंत निर्मल पदार्थ है, इस प्रकार का चिंतन किया है। फिर भी उन्होंने, जैसे कि इन 5 भावनाओं में ये बात चली थी ना कि न केवल शरीर की बात है, शरीर के साथ स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश, गांव की भी बात है, तो क्या अशुचि भावना सिर्फ शरीर तक सीमित हो गई है? क्या वो स्त्री पुत्रादि तक नहीं गई है? तो गई है, क्योंकि आचार्यों ने शरीर के भी 2 भेद किए, एक अपना शरीर और एक स्त्री पुत्रादि का शरीर। अपने स्त्री पुत्रादि के जो शरीर के प्रति है, इसे 5 इंद्रियों के भोगों की दृष्टि से उसकी सुंदरता पर ये मोहित होता है, तो वो राग तोड़ने के लिए भी अशुचि भावना का स्वरूप विचार किया जाता है, और अपने जो शरीर है स्वयं का, उसके प्रति राग तोड़ने के लिए भी विचार किया जाता है। और दोनों तरफ से जो विचार होता है, तो एक की दृष्टिकोण तो ये रहती है कि संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वरा, कुरेतिया के अशुचितन पर काम रोगी रति करें, बहु मृतक क्षण मसान माही काक ज्यों चोंचें भरे। माने जब स्त्री से विरक्ति करानी हो तो उसका शरीर कितना घिनौना है इसका वर्णन विस्तार से किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष का शरीर बहुत पवित्र है और स्त्री का शरीर अपवित्र है, वो तो चूंकि पुरुष के लक्ष्य से बात की जा रही है इसलिए स्त्री के शरीर की बात करते हैं। स्त्री को समझाएंगे तो पुरुष के शरीर की बात करेंगे, पर शरीर की बात करनी है ना, क्योंकि स्त्री पुरुष के शरीर पर मोहित होती है और पुरुष स्त्रियों के शरीर पर मोहित होते हैं। तो अशुचि भावना में वो चिंतन भी गर्भित है और निज की देह का चिंतन भी गर्भित है। अभी तक कहा था कि ये शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है, कभी भी चला जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा, एक क्षण का इसका भरोसा नहीं है। और जब इसके जाने का काल आएगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे जाने से रोक नहीं सकेगी, ये असरण बात हुई। और रहेगा भी तो कोई इसमें सार नहीं है, दम नहीं है, सुख की प्राप्ति इससे तुझे होने वाली नहीं है, और तेरे सुख दुख तेरे को अकेले ही भोगने पड़ेंगे। ये शरीर तेरे से अत्यंत भिन्न है। और अब ये कह रहा है कि ये अत्यंत मैला कुचैला और गंदा है। समझ लीजिए कि उसके अंदर में इसके प्रति एक तरह से ग्लानि भाव पैदा करके इससे भी अरुचि कराना चाहते हैं। इसलिए अरुचि भावना में अशुचि शरीर की अशुचिता का चिंतन सबसे ज्यादा हुआ है। कोई भी हम भावना उठाकर देखेंगे तो उसमें इसकी ही चर्चा ज्यादा मिलेगी कि पल रुधिर राध मल थैली की कस बसादी तें मैली, नवे द्वार बहे घिन कारी अस देह करे के में यारी। ये शरीर क्या है कि तो पल रुधिर खून मांस चर्बी इनका एक घर है, इनसे भरा हुआ है। कीकस बसादित है मैली, कोई हर जितनी गंदगी है कोई शरीर के अंदर में निरंतर पैदा होती रहती है। और नव द्वार बहें घिनकारी, ये नौ रास्ते हैं शरीर के, दो आंखें, दो कान, दो नाक, नाक के छेद दो है ना, वैसे दो नाक एक ही है, कान और आंखें तो दो दो हैं, तो दो नाक कही तो लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन नाक के छेद भी दो है ना, तो दो तो कितने हुए छह, और एक मुंह ये सात, और एक मूत्र द्वार एक मल द्वार, इन नौ रास्ते हैं। इन रास्तों से निरंतर गंदे पदार्थ निकलते रहते हैं। मल द्वार और मूत्रदास का तो नाम ही मल द्वार है, तो वहां से तो मल निकलना ही है, मैले पदार्थ निकलते ही हैं। लेकिन नाक में से भी जो निकलता है वो कौन सा ऐसा अच्छा पदार्थ है, यदि बाहर निकले वो कोई देखना पसंद करता है। आंख में भी कीचड़ आता है ना, और कान में भी कने भी होता है ना, ये भी मैल है कि नहीं, और मुंह से भी खकार निकलता है। तो ये जितने भी पदार्थ इसके अंदर से निकलते हैं वे अत्यंत घिनकारी हैं, लिखा ना नव द्वार बहें घिनकारी, कि इनमें से जो भी माल निकलता है उसे देखकर हमें घृणा पैदा होती है। तो समझ लेना इसके अंदर क्या होगा, अस देह करे किम यारी, ऐसे शरीर से तुम दोस्ती क्यों करते हो। असली मुद्दे की बात यह है, शरीर की निंदा करना उनका उतना उद्देश्य नहीं है जितना उद्देश्य तेरी उससे जो यारी है दोस्ती है उसे तुम अपना मानता जानता है उससे जो राग करता है वो तोड़ना ज्यादा उद्देश्य है। इसलिए वो अंत में प्रश्न करते हैं ऐसी देह से तुम क्यों राग करता है, पहले ही बताई थी ये तेरी नहीं है ये तू नहीं है, हैं? अब उसकी गंदा जो स्वरूप है वो उसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं इस देह के संयोग में जो वास्तु पल भर आएगी वह भी मल निमल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये तेरे शरीर की महिमा तो इधर विचार करके तो देख, अच्छे से अच्छा पदार्थ इस शरीर की संगति करता है तो एक क्षण में अपवित्र हो जाता है। अपन अभी एकदम धुली बनियान पहने और 5 मिनट पहने रखें और दूसरा आदमी का भी मेरी बनियान आज सूखी नहीं है, आपके पास कोई एक बनियान होगी और आप अपनी बनियान उतार करके उसे दें तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्यों? ये तो गंदी है, पहनी हुई है। अरे 5 मिनट पहले पहनी है कि 5 मिनट पहले पहनी हो चाहे 1 मिनट पहने, कोई धुली धुलाई हो तो दो। तो मैं ये पूछता हूं कि इतनी धुली धुलाई बनियान ये 5 मिनट में गंदी कैसे हो गई? ये आपके शरीर की संगति में पड़ गई तो हुई है ना। और बात जाने दो 5 मिनट की, अपन कोई बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए, शुद्ध अठपहरा घी, हाथ चक्की का आटा, क्यों अपने हाथ से लगाया हुआ गाय का दूध और उससे बढ़िया मिष्ठान हलवा वगैरह बनाए, वो पदार्थ अत्यंत पवित्र है ना, मुनिराज भी उसको आहार में ग्रहण करते हैं, ऐसा पवित्र पदार्थ है ना, बाजार का नहीं लाए, अपने हाथ से सब किया। लेकिन यदि हम 1 सेकंड को मुंह में रख लें और फिर निकाल के बाहर उसे रखें तो कोई उसे खाने को तैयार होगा कि झूठा, अपवित्र हो गया? ये तो परम पवित्र था, अपवित्र कैसे हो गया? कि तुमने मुंह में रखा ना, झूठे मुंह में तुमने मुंह में रखा ना, तो मेरा मुंह भी झूठा कहां था? मैंने तो 100-100 दफे कुल्ला किया था मंदिर में, मैं झूठे मुंह थोड़ी आता हूं। और कोलगेट के सुरक्षा चक्र से इस मुंह को परम पवित्र बनाया था, क्यों? 100 दफे कुल्ला करने के बाद भी यदि मुंह में हम पानी भर के किसी के ऊपर डाल दें तो क्या झूठा पानी क्यों डाला? झूठा कहां है? मुंह ही झूठा नहीं है कि 100 दफे कुल्ला करने के बाद भी वह मुंह का झूठापन जाता नहीं है? और वो शुद्ध बढ़िया पानी, हाथ कुएं का पानी, क्यों? बॉइल्ड वाटर, वो 1 सेकंड मुंह में रहने से अपवित्र हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो समझ ले तेरा मुंह कितना पवित्र है। अरे भाई, पानी का स्वभाव तो पवित्र करना है ना। यदि एक कपड़ा गंदा हो जाए तो अपन पानी से धोते तो पवित्र हो जाता है कि नहीं? चौका गंदा हो जाए तो पानी से धोते तो पवित्र हो जाता है कि नहीं? अपना शरीर गंदा हो जाए तो अपन पानी से धोते हैं तो पवित्र हो जाता है कि नहीं? ये पानी तो सब अपवित्र पदार्थों को पवित्र करने वाला है। हमारी आंखों देखी बात भी है और शास्त्र में भी लिखा है, पूजा में पढ़ते हैं ना, मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मलचीन, कि जल का स्वभाव तो मल को छीन करने वाला है और ये तो संपूर्ण मलिन वस्तुओं को हर लेता है। तो जो जल हर पदार्थ को पवित्र कर देता है, वो ही जल जब इस मुंह में जाता है तो मुंह को पवित्र नहीं कर पाता है बल्कि खुद अपवित्र हो जाता है। कितना महान है तेरा मुख, क्यों? सोचो, सारा शरीर पवित्र हो जाए तो नहाने से पवित्र हो जाता क्या नहीं हो जाता? तो मुख में को भी नहा दिया ना आपने तो पवित्र मान लो ना, लेकिन नहीं, वो तो हमेशा झूठा ही बना रहता है। और गिलास मुंह से लग जाए तो गिलास झूठा हो गया, पानी मुंह से लग जाए तो पानी झूठा हो गया, खाना मुंह से लग जाए तो खाना झूठा हो गया। तो तू जो दूसरे अपवित्र पदार्थों से इतनी घृणा करता है, एक दफे तू अपने इस मुंह की तरफ तो देख, कि ये कभी पवित्र नहीं होने वाला ऐसा अपवित्र है। वो जो हलवा पूरी बनाई थी ना बढ़िया, भी शुद्ध सात्विक मुनिराज के लिए आहार दान देने में जैसी पवित्र, वो हलवा यदि अंदर पेट में चला जाए और 2 मिनट बाद ही वोमिटिंग हो जाए तो उसे कोई देखना पसंद करता है? उस परम पवित्र हलवा की ये दुर्दशा एक किसने की 2 मिनट की संगति से? क्यों, ये तेरे शरीर के संयोग से ही ये काम हुआ है ना। और वो ही हलवा मसाला मान मसाला यदि 8-10 घंटे शरीर के संयोग में रह जाए और फिर किसी रास्ते से निकले तो लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, इतना अपवित्र हो जाता है, उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये दुर्दशा उस पवित्र हलवे की कैसे हुई? ये तेरे शरीर की संगति में आकर के हुई ना। रोम रोम से, उन्होंने 9 द्वार लिखे हैं, मैं तो कहता हूं लाखों द्वार हैं। रोम रोम से जो पसीना निकलता है वो गंदगी है कि क्या है? हजारों द्वार घिनकारी निरंतर इसमें से बहते रहते हैं। तो ऐसा शरीर, इस शरीर की जो इतनी उन्होंने घृणाकारी पना बताया उसके पीछे शरीर की निंदा करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन शरीर के प्रति जो तेरा राग है उसे तोड़ना आचार्य का उद्देश्य है। इसलिए 12 भावनाओं में इस शरीर की अशुचिता का विचार किया जाता है। देखो सारा ध्यान शरीर पे लग रहा है, शरीर अनित्य है, न मालूम कब चला जाएगा। क्यों, शरीर असरण है, जाते हुए को कोई रोक नहीं सकेगा, शरीर में कोई सार नहीं है, असार है, ये आत्मा का कभी साथ दे नहीं सकता है, आत्मा को अकेला ही अपना सुख दुख भोगना पड़ेगा, और ये आत्मा से अन्य है और महा अपवित्र है। ये इतना अभिनंदन पत्र दे दिया, क्या 6 क्वालिटी बता दी, 6 भावना में किसकी? इस शरीर की है ना। क्यों, इसलिए बता दी कि तेरा एकत्व मत इससे तोड़ना है, तेरा राग इससे तोड़ना है, और इसके विरुद्ध तेरे उपयोग को आत्मा से जोड़ना है, तेरा अपनापन आत्मा से जोड़ना है। तो क्या आत्मा नित्य है, आत्मा परम शरण भूत है, सब पदार्थों में सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान, सब पदार्थों में सार पदार्थ एक भगवान आत्मा ही है, और मोक्ष में ये अकेला ही जाएगा, अनंत से अकेला ही भोगेगा, और पर से इसका कोई भी संबंध है नहीं, और ये परम पवित्र है। तो ये देह की 6 डिस्क्वालिटी और आत्मा की 6 क्वालिटी ये बताकर, देह से एकत्व मत तोड़ाकर आत्मा में एकत्व मत स्थापित करवाना इन 12 भावनाओं का प्रयोजन है। जिनों का ऐसी स्थिति होगी तो मिथ्यात्व की भूमिका की बात है, लेकिन जब हमको इनसे एकत्व मत टूट जाता है, इनका कर्तृत्व भोक्तृत्व टूट जाता है, ऐसे सम्यक दृष्टियों के भी 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए कि हाँ करना चाहिए कि इनसे एकत्व ममत्व टूट जाने के बाद भी इनसे राग बना रहता है। क्या कि ठीक है शरीर अपना नहीं है, है ना, छोड़ के चला जाएगा, इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन अपने काम का तो है ना, काम तो आता ही है ना, इसके बिना काम तो चलता नहीं है ना। काया राखे धर्म, और कालिदास ने तक यहां लिख दिया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही धर्म का साधन है, शरीर ठीक रहेगा तो हम आत्मा का कल्याण भी कर सकेंगे। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, के शरीर ही धर्म का एकमात्र आद्य माने सबसे पहले नंबर का साधन है। और यहां उल्टी बात कर रहे हैं, दो बातें अलग अलग हैं। एक कहता है शरीर धर्म का साधन है, पहले नंबर का आद्य साधनम है ना, और दूसरे कहते हैं कि शरीर गंदा है, मैला है, कुचैला है। बोलो क्या कहते। और ये बात कालिदास की है कि हम अपने अंदर में से पूछें, हम भी ऐसा नहीं समझते हैं। क्यों? कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम धर्म कर सकेंगे, इसलिए हम निरंतर शरीर के स्वस्थ रखने के लिए सुबह से शाम तक प्रयत्न नहीं करते हैं, सच बोलो। और हमारे प्रयत्न करने के बाद ये स्वस्थ रहता है, नहीं लेकिन करते हैं ना है? और आज की ये दुर्भाग्य की बात है कि धर्म के क्षेत्र में भी इस स्वास्थ्य भी हावी हो गया है। ये योगा योगा करते हैं धर्म के नाम पर, योगा क्यों? तो उसमें ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, क्यों? इस ठीक रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये सारा हमें योगा, तो धर्म को योग माने आत्मा से उपयोग को जोड़ने को योग बोलते थे, क्यों? अयोग केवली तो वो होते हैं अपने यहां, और अब वो हमारा ये जो धर्म है, ध्यान है, जो सीधा मुक्ति का कारण था, वो भी अब शरीर को ठीक रहने का काम कर रहा है। क्यों? और सारे धर्म के गुरु शरीर को ठीक करने के लिए आपको इस लेन में जुटा रहे हैं, और दूसरे प्रेम से रहो घर में, पति पत्नी को खूब प्रेम से रहना चाहिए, भाई बहन के साथ प्रेम से रहो, यही उपदेश सारे जगत में दिया जा रहा है धर्म के नाम पर। क्यों? इस सारे जगत को अच्छा भी लगता है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि कितने लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन इसमें तो ये कह रहा है, कहा जा रहा है कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये कोई तेरा साथ देने वाले नहीं है। क्यों? ये कोई सगे नहीं है, इनसे राग तोड़, ये शरीर भी मेला कुचैला है, गंदा है, इसमें सार नहीं है, इससे भी राग तोड़ और इसकी संभाल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। देखो भाई, जगत से बिल्कुल अलग चीज है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वे जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं उनको ये बारह भावनाओं के जरा भी ख्याल नहीं है कि इन बारह भावनाओं में जो शरीर से और स्त्री पुत्रादिक से विरक्ति के लिए इतना उपदेश दिया है, और निरंतर रोजाना ये भावनाएं साधुओं को भी भानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी जो थोड़ा बहुत राग शेष रहता है कहीं शिष्यादिक के प्रति और शरीर के प्रति, तो वो टूटना चाहिए और कम से कम द्वारा पैदा ना हो जाए यदि नहीं है तो, इसके लिए इन भावनाओं को भाना चाहिए। तो जिस जैन दर्शन में निरंतर इन बारह भावनाओं के माध्यम से देह से एकत्व तोड़ने की बात हो, देह से राग तोड़ने की बात हो, वो ही धर्म, देह कैसे स्वस्थ रहे और स्त्री पुत्रादि से तुम कैसे प्रेम से राग करो ये सिखाने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब ये पानी में आग लग गई है, अब बुझाएगा कौन आग को? यदि पानी आग को जलाने लग जाए तो फिर बुझाएगा कौन? इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, हमको ये बारह भावनाओं का स्वरूप समझकर आज के संदर्भ में बहुत गहराई से इस बार का निर्णय करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोग, सोवाणी मस्तके नमो सदा देव।